एक और वाक्या जिससे अब और भी हमें समझ आएगी उनकी कहानी, वो क्या है? अब एक और वाक्या लीजिए जो सरतासर खूंखार ज़हनियत को हमारे सामने बेनकाब करता है, यानी ऐसा वाक्या जिसको पढ़ने से पता चलेगा कि मक्का वाले तो उस वक़्त नबी सल्लम का खून भी लेने के लिए तैयार थे, यानी कत्ल के दर पे पहुँचे हुए थे। हजूर ने मुलहिका यानी साथ मिले हुए इलाकों में तालीमी वफूद भेजने का जो सिलसिला शुरू किया था, इसके तहत गज़वे उहद के मुत्तसलन यानी गज़वे उहद के फौरन बाद माहे सफ़र में, यानी सफ़र का महीना था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मुलहिका समझते हैं, साथ मिले हुए इलहाक से लाहिका, क्या किया था? अज़ल और वक़ारा बनु खुज़ैल के लोगों की ख्वाहिश पर इनके पीछे साजिश काम कर रही थी, 6 आदमियों का एक वफद रवाना किया, जिनमें से 4 को बमुकामे रजी चश्मा रास जगह है वो जहाँ एक चश्मा था वहाँ पे शहीद कर दिया गया, और हज़रत हुबैब और हज़रत ज़ैद बिन दसिन्ना को कैदी बनाकर मक्का ले जाया गया। वह बनु हुज़ैल के 2 कैदी कुरैश के पास थे जिन्हें तबादला करके उन्होंने छुड़ाया। हुजैर बिन एहाब तमीमी ने हज़रत हुबैब को अतबा बिन हारिस बिन आमिर के लिए लिया ताकि इनसे हारिस का बदला ले, जिसे हज़रत हुबैब ने मैदान बदर में मौत के घाट उतारा। ज़ैद बिन दसिन्ना को सफवान बिन उमैया ने अपने बाप उमैया बिन हल्फ के बदले में कत्ल करने के लिए ख़रीदा। सारी बात का खुलासा क्या है? कहा कि हमारे पास कुछ लोग भेजिए जो हमें दीन सिखाएं, तालीम दें। अल्लाह के नबी ने ज़ाहिर है कि कोई अनपढ़ तो नहीं भेजे होंगे, पढ़े लिखे जिनको दीन की बात की समझ थी, जो कर सकते थे ये काम। और आपको पता है किसी भी इलाके के वो लोग जो अल्लाह के दीन को आगे भेज सके वो सबसे कीमती लोग होते हैं। आपने उनको भेजा लेकिन उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। कितना बड़ा कत्ल है! जैसे कहते ना कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत हो जाती है, तो इल्म वाले की जान लेना आम लोगों की जान लेने से ज़्यादा बुरा काम था। खैर, ये अपनी शजाअत के गुण गाने वाले मैदान जंग में कलीलुल तादाद और बेसरो सामान मुसलमानों से पिटने के बाद अब 2 बेबस कैदियों की जान लेकर आतिशे कीना को बुझाना चाहते थे। इस्लामी माशरे की 2 कीमती हस्तियों को अगरचे शहादत का प्याला पिला दिया गया, लेकिन इस मौके पर दोनों के किरदारों का ऐसा वाज़े तकाबुल हो गया कि इसके असरात वक्त की तारीख की रगों में फैल गए। सफवान ने ज़ैद बिन दसिन्ना को अपने ग़ुलाम नस्तास के सपुर्द किया, वो हरम के बाहर तनीम में जाकर इनका काम तमाम कर दे। इस दिलचस्प ड्रामे से खुश वक्त होने के लिए कुरैश का एक मजमा मौके पर मौजूद था और इनमें अबू सुफियान बनफ्स नफीस शरीक था। अबू सुफियान ने करीब होकर ज़ैद से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी रहो सहो, और तुम्हारे बजाय हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दें? ज़ैद, जिसके सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी, ईमान की किन बुलंदियों से जवाब देता है। आप ज़रा इस जवाब को सुने और हम अपना भी मुहासबा करें। आप सोचिए कि हमारी जान लेने के दर पर कोई खड़ा है और हम क्या कह रहे हैं। वल्लाही हम लोगों को इतनी सी बात के इवज़ भी आज़ाद होकर अपने अहलो याल में जा रहना पसंद नहीं कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हैं वहाँ इनको एक कांटा तक चुभे। ये थे आशिकाने रसूल, ये थे जान निसार करने वाले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा चुभ जाए हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे हमें हमारे बीवी बच्चों के पास जाने दो या ना जाने दो। और ये कोई किसी नात का शेर नहीं था, ये कोई पोइट्री नहीं थी, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये असल में उनके दिल की कैफियत थी। अपने आप से पूछिए, क्या हम भी नबी सल्लम से इतनी ही मोहब्बत करते हैं? और हमको मैं बदलिए, क्या मुझे नबी सल्लम से इतनी मोहब्बत महसूस होती है? अबू सुफियान ये जवाब सुनकर दंग रह गया, यानी हैरान हो गया और पुकार उठा, मैंने किसी को किसी का ऐसा मुहिब यानी मोहब्बत करने वाला नहीं पाया जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनको महबूब रखते हैं। ये थी असल में आपकी कामयाबी कि आपके साथियों के दिलों में आपकी मोहब्बत थी। फिर इस मुजस्मे सिद्क व वफा को तलवार का लुकमा बना दिया गया। क्या मतलब है इस खूबसूरत जुमले का? यानी वो शख्स जो नबी सल्लम से मोहब्बत में सच्चा था उसको तलवार से ज़िबा कर दिया गया। कौन जानता है कि ज़ैद के इस किरदार ने कितने दिलों में एक जगह बनाई होगी और कितनी रूहें कुरैश की जालिमाना और बुरी कार्रवाई पर मातम कर रही होंगी। حضرت حبیب بعد تک قید میں رہے، قید میں رہ کر انہوں نے اپنے ایمان و اخلاق کی جو جھلک متواتر دکھائی، اس کا ایک واضح نتیجہ تو یہ ہوا کہ حجیر بن احاب کی لونڈی معاویہ بعد میں اسلامی تحریک میں جذب ہو گئی، اور اسی کے ذریعے حضرت حبیب کی روداد اسیری یعنی قید میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کہانی سامنے آئی۔ معاویہ کا بیان ہے کہ ان کے قتل کا مقرر وقت جب قریب آ گیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اس طرح منگوایا جو بھجوا دیا گیا، مگر بعد میں یہ دیکھ کر زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی کہ اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اور چھوٹا بچہ حبیب کی گود میں بیٹھا ہے۔ جس قیدی کو اس ظالمانہ طریقے سے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہو، اس کے قابو میں دشمن کا ایک بچہ آ جائے اور ہتھیار بھی اس کے ہاتھوں میں ہو، تو جو اندیشے ہو سکتے ہیں ظاہر ہیں۔ میرے اس اضطراب کو حبیب نے بھانپ لیا اور اطمینان دلایا، میں کسی حال میں اس معصوم کی جان نہیں لینے کا۔ لے سکتے تھے نا، انتقام تو اندھا ہوتا ہے کہ چلو باپ کو نہیں تو بچے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً لڑکے کو الگ کر دیا۔ یہ بلندی کردار کیا ایک مشل کی طرح مکہ کے تیرہ و تار یعنی اندھیری فضاؤں میں جگمگانا اٹھی ہوگی؟ یعنی اصل یہ کردار چاہیے آج بھی، ایسا خوبصورت کردار تھا جس نے دشمنوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اور صحابہ کرام جو تھے وہ کس خوبصورت طریقے سے دشمنوں کے بیچ میں بھی اپنا اعلیٰ کردار قائم رکھ سکے۔ خیر پھر ان کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تنیم لے جایا گیا، کیونکہ قتل کی نیت تھی نا تو سولی پہ چڑھاتے تھے۔ تنیم وہ جگہ جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں، وہاں لے جاتے، وہاں پہنچ کر انہوں نے اجازت لے کر آخری نفل نماز با اطمینان پڑھی اور شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے والوں کے لیے ایک مبارک سنت قائم کر دی۔ پھر جلد ہی فارغ ہو کر کہا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز میں دیر کر رہا ہوں، یعنی نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، یہ مختصر سی دعا مانگی، یا اللہ ہم نے تیرے رسول کے پیغام کو پہنچا دیا، تو کل صبح اس ہستی کو اس سے آگاہ فرما دے جو کچھ کہ ہمارے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان دشمنوں کی تعداد کو کم کر، ان کو تفرقے میں ڈال کر ہلاک کر، اور ایسے خون خواروں میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑ۔ اور صلیب پر لٹکا دیے گئے، اور آخر میں ابو مغیرہ نے حربہ مار کر ان کا رشتہ حیات منقطع کر دیا۔ عین اسی آخری لمحے ان کی زبان پر کچھ اشعار آئے، جن میں سے مشہور ترین یہ ہیں، ولست ابالی ہی نہ اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مدجعی، میں جب اسلام سے مالا مال ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں پھر مجھے اس بات کی کچھ فکر نہیں کہ خدا کی راہ میں مجھے کس کروٹ گرنا نصیب ہو رہا ہے، یعنی دائیں طرف میری لاش گرے بائیں طرف گرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ کب بندہ بولتا ہے؟ جب اس کو یقین آتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ کیا ہے، بلا حیاؤن ولا قلعہ تشرون۔ آپ دیکھیے کہ صرف یہ سوچ انسان کی کوششوں کا رخ بدل سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کبھی اللہ کے راستے میں جان دینا تو بہت بعد کی بات ہے۔ وقت نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں قربان کر سکتے، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ سچا شعور دے دے کہ اللہ کے راستے میں میں جس چیز کو پیچھے ڈال کے اللہ کے راستے میں نکل پڑتی ہوں وہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں۔ آپ کو کیا پتہ کہ آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا اور جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا ہو۔ بہرحال کچھ آگے، ان دو جانوں کو لے کر قریش نے اپنے زوم میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کی قوت گھٹا دی، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان مظلوموں کے خون شہادت کے قطرے دلوں کی کھیتیوں میں ایسے بیج بن کر پڑے ہوں گے کہ آگے چل کر ان سے اسلام کی نئی فصلیں لہلہا اٹھی۔ یاد رکھیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو ایسی ہی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں کی، اور ہم مسلمانوں کے پاس سب سے خوبصورت چیز اس وقت ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ ایسے ایسے جیالوں اور ایسے ایسے لوگوں سے ہماری تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہی گھٹیا انتقامی حرکات کے ساتھ ہم قریش کی سیاسی خیانت کو بھی پیش کرتے ہیں، جن کا مظاہرہ انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑ کر کیا۔ इस अजीम तारीखी माहदे के तहत तय पाया था कि अरबी कबाइल में से जिसका जी चाहे वो कुरैश के साथ माहदाना ताल्लुक़ कायम करे और जिसको पसंद हो वो इस्लामी रियासत के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ कायम कर ले। कबाइल को पूरी आज़ादी होगी, किसी तरफ से इन पर जबर ना किया जाएगा। चुनाचे वहीं इस मौके पर बनू बकर ने कुरैश से और बनु खुज़ाया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदाना ताल्लुक़ जोड़ लिया। ये बात तो आप पहले समझ चुके हैं ना कि अरबों की अपनी कोई हुकूमत नहीं थी कि मौका पड़े तो पुलिस आ जाए, गवर्नमेंट उनको सिक्योर करे। तो वहाँ लोग अपना दोस्ती का ताल्लुक़ दूसरे कबीले से करते थे, ये ज़रूरी होता था ताकि कोई दुख सुख आ जाए तो दूसरा कबीला उनका साथ दे। तो बनू बकर ने कहा ठीक है जी, हमारी कुरैश से दोस्ती है, और बनू खुज़ाया जो निस्बतन कमज़ोर कबीला था उन्होंने कहा कि हम नबी सल्लम से दोस्ती का ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लामी दौर से कबल इन दोनों कबीलों के दरमियान एक कत्ल के सिलसिले में इंतकाम दर इंतकाम का मनहूस चक्कर जारी था और इनके माबैन कई वाक़ियात कत्ल हो चुके थे। बनु बकर अपनी बारी पर बदला लेने के लिए तुल ही रहे थे कि मुसलमानों की यानी जमात ने या इस्लामी तहरीक ने तारीख़ में शदीद मद्दोजज़र पैदा कर दिया। मद्दोजज़र पैदा करके जाहली अरब के तमाम कबाइल की तवज्जो इधर खींच ली और वो बाहमी मामलात को दरकुनार रख कर इस नए पैगाम की मुखालफत में सफ बस्ता हो गए। तहरीक इस्लामी के इनात ने जो सतही सा इत्तेहाद इन में पैदा कर दिया था, इसका ज़ोर मुआहदा हुदैबिया के बाद ठंडा पड़ने लगा। अब इन लोगों को अपने पुराने झगड़े याद आए। बनू बकर की एक शाख बनू वैल थे। बनू वैल के एक शख्स असवद बिन रजन के मकतूल लड़कों का बदला लेने के लिए बनु वैल के सरदार नौफल बिन मुआविया ने कबीले के लोगों को साथ लिया। अय्याम हुदना यानी मुसालहत के वक्फे को गनीमत जानकर बनु खुज़ाया पर हमला किया और आगाज़ शरारत के तौर पर चश्मा अलू तीर के पास एक खुज़ाई के खून से हाथ रंगे। बकिया खुज़ाई इस नादीदा यानी जिसको देखने की उम्मीद नहीं थी या अचानक कह लीजिए अहद शिकनी की वजह से घबरा कर भागे और इन्हें हमलावरों ने ताकुब करके यानी पीछा करके कत्ल किया। कुरैश ने माहदे हुदैबिया की जिम्मेदारियों को बलाए ताक रख कर बनू बकर को हथियार भी फराहम किए और रात की तारीकी में छुप छुप कर खुजाइयों से लड़े। बनू खुज़ाया ने हरम में जाकर पनाह ली और बनू बकर के सरदार को पुकार कर कहा, ए नौफल देखो अब हम हरम में दाखिल हो चुके हैं, अब बाजा जो खुदा के लिए खुदा के लिए। मगर वो फतह के नशे में बहक रहा था। इसने कहा आज कोई खुदा नहीं, ए बनु बकर अपना पूरा पूरा बदला लो, क्या हरम के एहतराम में अपनी इज्जतों का इंतकाम लेना फरामोश कर दोगे। चुनाचे इन जालिमों ने हरम में खून रेजी की और कुछ खुजाई बमुश्किल जाने बचाकर खुदैल बिन वरक़ा और इसके ग़ुलाम राफे के मकान में जा छुपे। कुरैश ने कबाइली रकाबतों के तहत जज्बाती हैजान में आकर एक ऐसी बड़ी हमाकत की जिसका खुमियाजा इन्हें नकद दस नकद भुगतना पड़ा। यही वाक़या फ़तेह मक्का का मुहर्रक यानी सबब बना। कुरैश ने कतन न सोचा कि तहरीक इस्लामी की लम्हा बलम्हा आगे बढ़ती हुई ताकतवर रॉ के मुकाबले में इनकी कुव्वत अखलाकी और सियासी दोनों लिहाज से हद दर्जा गिर चुकी है और इनको फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। और इस वाक़े की वजह से अरब के कबाइली इलाके में कुरैश की बदहदी का खूब चर्चा हुआ होगा और इनकी साख हद दर्जा गिरी होगी। फिर बनु बकर की इंतहाई ज़ालिमाना रविश और बनु खुज़ाया की हद दर्जा शान मज़लूमी ने तमाम कबाइल को चुकन्ना कर दिया होगा कि कुरैश की क़ियादत अमन और इंसाफ बहम नहीं पहुंचा सकती। फिर इस वाक़े में अल्लाह के नाम के तकद्दस और हरम की हुरमत को सदियों की रिवायात के बखिलाफ जिस बुरी तरह से पामाल किया गया था, इसने अवाम के दिलों में जज्बाती हलचल बरपा कर दी होगी। इस हंगामे से कुरैश ने अपना वज़न जालिम अंसर के पलड़े में डालकर अपने आप को जलील कर लिया। इसके अलावा कुरैश ने सोचा तो यह होगा कि हम इस्लामी रियासत के एक हलीफ को कुचल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी कीने की आग को ठंडा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ना सोचा कि हम जाहली निज़ाम की पुश्त पनाही करने वाले बचे खुचे कबाइल का शेराजा अपने हाथों से दरहम बरहम कर रहे हैं और बाज़ हमसाया कबाइल को ख़ुद ही धकेल कर मदीना के हवाले कर रहे हैं। क्या समझ आया इतनी बात में? चूँकि थोड़े से लफ्ज़ मुश्किल है ना, तो मे भी आप उस रूह को ना पा सकें। तो आप देखिए कि इधर जो बात है ना इस हिस्से में, वो है इस्लाम में वादा शिकनी नाकाबले बर्दाश्त है। आप कोई बात कहें और उसको निभाए ना, इससे बहुत बेहतर है कि आप वो बात कहें ही ना। मक्का फतह कभी ना होता अगर सुलह हुदैबिया ना होती। और सुलह हुदैबिया का होना मक्का वालों का एक वादा कर लेना और उस वादे को तोड़ना, यानी बनु बकर की हिमायत में बनु खुज़ाया पे जाके हमला कर देना, ये वजह बनी थी नबी सल्लम के मदीना से मक्का की तरफ निकलने की। किस लिए? मक्का को फतह करने के लिए। ये जुरत तो आपने कभी लेनी भी नहीं थी। यहाँ से आप देखिए कि हमारे नबी रूल्स को फॉलो करना, असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, उनकी शख्सियत का हिस्सा था। यानी आप कह लीजिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि फ़तह मक्का की वजह क्या बनी, सबब क्या बना फ़तह मक्का का, तो वादा शिकनी। अब वादा शिकनी को क्या है वादा? वादा क्या होता है? उम्मीद दिलाना। उम्मीद दिलाना क्या है? होप। आप किसी को उम्मीद दिलाते हैं आई विल डू इट, और आप नहीं करते तो फिर आपने वादा तोड़ा। कोई कहता है मैंने किया ही नहीं, ठीक है नहीं किया, उसको तौफीक नहीं मिली इस बात की, ठीक है आपको वादा करने का अजर तो मिला होगा, लेकिन बग़ैर किसी वजह के या उसको रिलैक्स ले लेना, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी कमिटमेंट्स को ईजी फील करना, लेयर ले लेना। याद रखिए, ये अगर मैं करूँ तो सबसे बुरा है, आप में से कोई करेगा तो भी बुरा है। आपने क्लास में आने की नियत की है, आपने कहा हम आया करेंगे, वक्त पे आएंगे, वक्त पे जाएंगे, और अपने पूरे स्केड्यूल को इस क्लास के इर्द गिर्द घुमाएंगे, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है। फिर इस वक्त के दौरान अगर आप जान के कोई करते हैं कि अल्लाह की तरफ से पढ़ जाए, वो तो हम सब मजबूर हैं, ये तो ज़िंदगी में रहेगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को नॉन सीरियस लेते हैं तो उसको छोड़ना बहुत आसान होता है। सिर्फ उसी चीज़ की हम वैल्यू पहचानते हैं जिसकी हमें कदर होती है। आपके बच्चों के स्कूल्स के दौरान आप कभी भी पिकनिक का प्रोग्राम नहीं बनाते, पाकिस्तान आप नहीं जाते क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन आपका स्कूल खुल जाए इट्स ओके। आपका स्कूल खुल गया, आप उस वक़्त में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, आप ले लेते हैं इट्स ओके। बात समझ रहे? यानी ये आपके अपने अंदर की बातें हैं, मेरे अपने अंदर की बातें, आप मेरे हालात नहीं जानते, इस तरह मैं तो आपके बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन इन सारी बातों को पढ़ते हुए खुद से नियत करें, अगर उम्मीद दिलाई है तो पूरी करनी पड़ेगी, वादा किए तो निभाना पड़ेगा, कमिटमेंट किए तो निभानी पड़ेगी। और असल कीमत वैल्यू ही कमिटमेंट की है। सोने जैसा बंदा हो लेकिन बात करके पीछे हो जाए, अगली दफ़ा आप उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे कमिटमेंट, मेरी बात की वैल्यू मुझे यहाँ लाती है, वरना मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले आपके बहुत सारे होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे नबी ने आपकी तबीयत के मुझे तो दो रुख नज़र आए हैं, रुहमा बैनहुम और अशिद्दा अलल कुफ्फार। आम हालात में साथियों के साथ बैठे हैं तो रफ़ा बीमा रहमत मिन अल्लाह लिंता लहुम, ईजी गोइंग, रिलैक्सिंग। ये नहीं कि हर वक्त ही लोगों के सर पे सवार हैं, रोप डाल रहे हैं, प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ कोई निज़ाम बिगड़ता, जहाँ कोई काम ख़राब होता, तो आप वाकई एक नंगी तलवार बन के वहाँ खड़े हो जाते थे। यही असूल अपने बच्चों में रखें, हर वक्त रोक टोक टोक नहीं, हर वक्त उनको लगे बच्चों को मामा कितनी स्वीट है, मम्मी कितनी हंसती हैं, मामा कितनी जॉली हैं, पर जहाँ उन्होंने कोई गलत काम किया आपकी आंखों में खून होता रहा। बस बेस्ट पेरेंटिंग असूल है ये। हम माथे पे टेबरी डाल के उनको हर वक्त रोक टोक करते रहते हैं, और जब कोई वो ज़रा सी ऐसी बात कर दें जिस पर हम सब्र भी ना करें, तो हम कहते हैं अब बोली तो गुस्सा करेगा, अब चुप ही कर जाओ। नहीं, गलत तरीका। आम रिलैक्स रहें, खुश रहें, अगले से दोस्ती रखें, ईजी गोइंग फील कराएं, लेकिन जब कोई गड़बड़ करे उस वक़्त पे तू कौन और मैं कौन, फिर कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो बहरहाल इस सारे को पढ़ने के बाद यानी वाकई दिल बंदे का दर्द से भी भर आता है। मैं तो इन सारे वाक्य और आपको तो कि कितना लंबा चैप्टर है, मैं तो इस पूरे टॉपिक को जो मेरा ख्याल है हमने कई नशिस्तों में पढ़ा। आपको बताऊं कि मैं जब भी कोई फाइल सेव करती हूँ ना तो चैप्टर का नाम फिर उसके बाद ए बी सी डी ताकि एक पूरी सीक्वेंस है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना जिसका आज का आखिरी हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, ए टू जी पूरे टॉपिक हो गए। अब मैं क्या करूँ? तो फिर Z1, Z2, Z3, Z4 आज का ये टॉपिक मेरा ख्याल है Z5 पे नाम से सेव होगा। और चैलेंजेस, ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? दिल करता है मैं अल्लाह के नबी के सीने से लग के रहूँ कि मैं आपका दर्द जान सकती हूँ। कितना आसान था एक लात मारते और हंसी खुशी रहते बीवी बच्चों के मजे। पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ चैप्टर है। ऐसे हालात में एक बंदा दुनिया में इतना बड़ा काम कर गया, आज मेरे आपके तो हालात ही बड़े खुशगवार हैं। अपनी मजबूरियों पे शर्म नहीं आती? अपने उज़र देख के लगता है कि इन उज़रों के ऊपर पांव रख कर हम पुल सरात से गुजर जाएंगे। मुझे तो लगता है इतने ढीले उज़र हैं कि वो हो सकता है हमें जंप लगवा ही दे नीचे का। हम छोटी छोटी बातों पे अपनी नब्ज़ें टटोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने ऊपर रहम खाते हैं। एक्चुअली एक्चुअली आज असल में ये, कल ये, परसों वो, ये है। यानी इस चीज़ को अपने दिल पर लें। मैन ऑफ आयरन, जिसको आप कहते हैं ना आयरन मैन, नबी सल्लम थे। और वो कब बंदा बनता है? और ऐसा ही बंदा बात कर सकता है दुश्मन के आगे खड़ा होकर। अब आखिरी जुमले हैं इस टॉपिक के, यानी जिसको आप एंड अप कह लीजिए कि ये सब कुछ, जो कुछ हालात नबी को पेश आए, जो चैलेंजेस थे, उनमें क्या था? दरअसल हर बुसीदा, बुसीदा कहते पुराने को, बुसीदा निज़ाम और हर फरसूदा क़्यादत जो आला असूल व मकासद और अखलाकी मेयारात और तामीरी नक्श तमद्दुन से महरूम होकर महज इस मनफी मकसद को अपना ले कि वक्त के उफक से उभरने वाली हर इसलाह और तामीर कैश कुव्वत को कुचलना है, इसकी तकदीर यही है कि इसकी अक़ल इसे हमाकतों की राह पर ले जाती है और इसका ज़ोर इसे ज़ोफ़ के घड़े में गिराता है, इसका एहसास बरतरी इसे जलील करता है और इसकी पेशकदमी, इसकी पिसपाई यानी इसके कमज़ोर पड़ने या इसके हारने का ज़रिया बनती है। बात समझ आई है? नबी सल्लम कौन थे? पुराने निज़ाम और फरसूदा क़्यादत को बदल कर इस्लाह और तामीर कैश किरदार लाने वाले। यानी आपने वाकई वक्त के साथ जिहाद किया, हर रस्म तोड़ी, हर गलत तरीका छुड़वाया लोगों का, बुरी रस्में छुटी, बुरे अकायद ख़त्म हुए, सब कुछ ख़त्म करके आपने लोगों को बड़े खूबसूरत तरीके से ये मामला दिया। अमर बिन सालिम खुज़ाई मदीना रवाना हो गए और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में जाकर बनु बकर और कुरैश के मजालिम का दुखड़ा सुनाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सरे मजलिस तशरीफ़ रखते थे। अमर बिन सालिम ने अरबी रिवायत के मुताबिक अपनी दास्तान दर्द को दिल शगाफ अशार में बयान किया। अरब लोगों के पास एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी और वो क्या थी कि अपना इजहार बयान अशार की सूरत में बहुत खूबसूरत करते थे। और आप कहते हैं कि एक शेर पढ़ दो तो एक पेज पढ़ने से ज़ायद बात समझ आती है, तो ये उनके अशार आपको नज़र आएंगे। ये अमर बिन सालिम कौन था जो मुकदमा लेकर गया था नबी सल्लम के पास कि मक्का वालों ने बनु बकर की हिमायत की है हमारे खिलाफ? और जब ये मदीना में मस्जिद नबी में खड़ा ये शेर पढ़ रहा होगा तो आप ज़रा इमेजिन तो कीजिए कि अल्लाह के नबी और सहाबा के दिलों पे क्या गुजरा होगा। देखिए ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पेश करता है। कहता है लाहुम्मा इन्नी नाशिदुन मुहम्मदन खिल्फ अबीना व अबीहिल अतलदा फंसुर हदा कल्लाहु नसरन आतदा वदु इबादल्लाहि यातु मददा फी फैलकिन कल बहरि यजरी मुजबिदा इन्न कुरैशन अखलफू का मौईदा हुम बैयतूना बिलवतीरी हुज्जदा वक़तलूना रुक्कां वसुज्जदा। तर्जमा देखिएगा। ए अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माहदा याद दिलाऊंगा जो हमारे और इनके कदीमी घरानों के दरमियान हुआ है। ए पैगंबर, हमारी मदद कीजिए और ख़ुदा के बंदों को पुकारिए ताकि वो मदद के लिए आपके गिर्द जमा हों। एक ऐसे लश्कर जरार के दरमियान उठिए जो समंदर की तरह मौजज़न होकर झाग उठा रहा हो, क्योंकि कुरैश ने आपका माहदा तोड़ डाला है। उन्होंने हमें रात की तारीकी में वतीर, जगह का नाम है, वतीर के पास आ लिया, सोते में हम पर हमला किया और फिर हमारे लोगों को रकू और सजूद की हालत में घायल कर दिया। बात समझ है? यानी ये मुसलमान कबीला था और अल्लाह के नबी को आके बता रहा है कि रात के अंधेरे में जब लोग हम सजदों में या रकू में यानी तहज्जुद में थे तो कुरैश ने मदद की बनु बकर की और उन्होंने आकर हमारे साथ ये मामला किया। ये जो लफ्ज़ है ना शुरू में लाहुम्मा, तो असल में ये या रब का मुतरादिफ है, बाज़ जगह ला रब भी मिलता है। अल्लाह के नबी ने इसकी इस बात को सुनकर क्या जवाब दिया? जवाब मिला नुसर तया अमर बिन सालिम, तुम्हारी मदद की जाएगी ए अमर बिन सालिम। अब कुरैश की आंखें खुली कि हमने कैसी हलाकत अंगेज़ हरकत कर डाली। और अबू सुफियान दौड़ा दौड़ा मदीना पहुंचा कि तजदीद अहद कराए, मगर वहां की फ़िज़ा का आलम यह था कि अबू सुफियान अपनी बेटी के घर जाकर जब बिस्तर पर बैठने लगा तो बेटी ने बिस्तर लपेट कर उठा लिया और कहा कि ये रसूल खुदा का बिस्तर है और तुम एक नापाक मुशरिक होते हुए इस पर नहीं बैठ सकते। कौन थी बेटी? नबी की बीवी थी, ज़ौजाए रसूल थी। अबू सुफियान नामुराद लौटा और चंद ही दिन बाद यकायक मक्का ने देखा एक अजीम लश्कर इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कितने लोग गए थे फतेह मक्का के मौके पर नबी सल्लम के साथ? 10,000। उससे 2 साल पहले उम्रे के लिए जाने वाले हुदैबिया के सफ़र में कितने लोग थे? 1400। 1400 10,000 में बदला 2 साल में, और मक्का फतह होते हुए 10,000, और उसी के 2 साल के बाद हज्जतुल विदास पे कितने हो गए? 1,00,000। ज़रबें लगीं फिर। यही इज़ा जा नसरुल्लाह वल्फत वरायतन्ना सैयद खलून फ़ी दीनिल्लाह अफवाजा। मक्का की गलियों ने वो वक्त भी देखा है, 13 साल में 100 के करीब लोग जमा हुए। याद रखिए, हक और सच का आगाज़ बड़ा रूखा फीका होता है, इंजाम बड़ा प्यारा होता है। गुलजाल हक वज़ाहक अलबातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। तो हक के रास्ते में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, बहुत ग्लैमरी नहीं, लोग फौजें बन के वहाँ नहीं जाते। हाँ, अगर जमे रहे एंड बड़ा ख़ूबसूरत होता है, क्योंकि सच में कशिश होती है। शुरू में मुआशरे ने इतनी पाबंदियाँ और इतना खौफ व हिरास पैदा किया होता है कि लोग आते हुए डरते हैं। कोई साबी कह रहा है उनको, तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई बेदीन कह रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जहनों से पर्दे हटते हैं और लोग फिर उसमें आने लगते हैं। बहरहाल, आखिरी पैराग्राफ देखिएगा। इन वाक़यात से ये वाज़ह है कि इस तारीखी कशमकश में जाहली क़यादत की मनफी कुव्वत को इसका हर इकदाम और इसकी हर शरारत, इसकी हर इंतकामी हरकत और इसकी हर मुज़ाहमाना कार्रवाई इसका मौक़िफ़ कमज़ोर करती चली गई। और दूसरी तरफ मुस्बत असूली और तामीरी ताकत आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती और आगे बढ़ती चली गई। इन हरकतों के मुकाबले में आप ज़रा मोहसिन इंसानियत के तर्ज़ अमल को देखिए कि फरीक़ैन के दरमियान हालत जंग चल रही है, और रईस यमामा, रईस कहते हैं सरदार बड़ा, और रईस यमामा इस्लाम कबूल करके मुस्तकिल तौर पर मक्का को जाने वाली गल्ले की रसद को बंद कर देता है। ऐन इसी ज़माने में मक्का के लोग कहत से दो चार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के गरीब तबकों का ख्याल करते हुए यमामा से अज़ खुद कहकर रसद जारी कराई, और फिर अपने पास से फुकराए मक्का के लिए 500 अशरफियाँ रवाना की। एक इसी एहसान ने मक्का के अवाम के दिलों को किस कदर मोह लिया होगा। एक रिवायत में तो ये तक आता है कि मक्का वालों ने ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा कि आप तो सिला रहमी का हुक्म देते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ ये रिश्ता तोड़ लिया। ये फिक्रा भी मज़कूर है, कतल तल आबा बिस सैफी वल अबनाए बिल जुई, बापों को तलवारों से ख़त्म कर दिया और इनकी औलादों को भूखों मार रहे हैं। क्या मतलब कि बज़ाहर नबी सल्लम पर ये एक एतराज़ दिख रहा है उनकी तरफ से कि आपने हमारे बापों को मरवा दिया। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत मामला था कि आपने उस वक़्त जब आप फातह बने, पिछले कई साल के आप बदले ले सकते थे, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस्लाम के नाम पर कोई धब्बा लगे। तो यहाँ पे ये तवील टॉपिक नंबर 4 हमारा जो चैप्टर था इसका पूरा हुआ। इस सारे का ख़ुलासा क्या है कि मदीना में आने के बाद नबी सल्लम को एक दिन भी आराम से बैठने का मौका नहीं मिला। मुझे तो यही समझ आया है, यानी मदनी दौर हमने अब पढ़ा है। अब इसमें से अगला टॉपिक हमारा तलवारों की छाँव में हम पढ़ेंगे, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हालात में जो जंगें आईं वो कैसे थी। और ये एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में तो नबी सल्लम के नाम पे ये धब्बा भी है कि आपने तलवारों के ज़रिए इस्लाम लिया और लोगों को जीता। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ गलत फहमी का नतीजा है। इंशाल्लाह हम वहाँ से बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन इस एक टॉपिक में हमने कुछ 10-15 मुख्तलिफ टॉपिक पढ़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये था हमारा मदनी दौर का एक ख़ुलासा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि मुहसिन इंसानियत मुखालफतों के तूफ़ान से गुज़रते हुए तलवारों की छाँव में, क्योंकि जब इतना जुल्म और इतना ऑपरेशन होगा तो फिर उसके लिए एक वक्त तो आएगा ना, हाथ तो फिर उठाना पड़ता है। और अल्लाह के नबी सल्लम के जितने भी मार्के थे वो जुल्म के लिए नहीं थे, जुल्म के ख़ात्मे के लिए थे। अपना मुहासबा तो हम सभी करते हैं ना। आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है या नबी सल्लम की मुश्किल थी? आपकी ज़िंदगी मुश्किल थी, हमारी ज़िंदगी में चैलेंज ज़्यादा है या नबी सल्लम की ज़िंदगी में चैलेंज ज़्यादा थे? आज दीन पे अमल करना मुश्किल है या उस दौर में मुश्किल था? उस दौर में मुश्किल था, तो फिर आज अल्लाह की मदद ज़्यादा आ रही है या उस दौर में आ रही थी? वजह वो किरदार था, वो अल्लाह की मदद को तलब करने वाला किरदार था। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, इसको यहीं पे रोकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إنك